नंदिनी की परमिशन देने के बाद सिद्धांत अपनी टीम के साथ उसके पुराने घर पर मौजूद था। उसकी टीम स्टोर रूम में सबूत घूमने की कोशिश कर रही थी ताकि वो शिव अय्यर को बेगुनाह प्रूव कर सके। उन्हें वहां काम करते हुए सुबह से शाम हो गई थी। ढूंढने के चक्कर में उन्होंने स्टोर रूम भी साफ कर दिया था, पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला था। पूरा स्टोर रूम क्लीन होने के बाद हेड डिटेक्टिव ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा तरीका है मिस्टर शुक्ला सफाई करवाने का। हर बार लोग ऐसे ही करते हैं, कभी कोई सबूत नहीं मिलता और फ्री में उनके घर की सफाई हो जाती है। मुझे नहीं पता मैं ये काम छोड़ने वाली हूँ, शक्ल देखो कैसे भूत जैसी हो गई है, उनकी टीम की लड़की बोली। धूल मिट्टी उनके चेहरे से लेकर बालों तक में लगी हुई थी। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। खैर अच्छा हुआ अब तुम लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं नहीं चाहती शिव बेगुनाह प्रूफ हो, नंदिनी ने कहा। वो वहाँ एक अलमारी से सटकर हाथ बांधकर खड़ी थी। अगर मिस्टर अय्यर कोऑपरेट करते तो कुछ मिल ही जाता, लेकिन वो है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, सिद्धांत ने गुस्से में कहा। व्हाटएवर, तुम्हारा इनका सबका शक दूर हो गया हो तो हमें हमारी फीस दो, और तुम मिस्टर सिद्धांत शुक्ला आगे से कहीं भी इस तरह की जगह पर ले जाना हो तो उन्हें बोल देना पहले सफाई की हुई होनी चाहिए। ये तुम्हारी तीसरी बार है जब हम तुम्हारी बताई जगह पर गए हैं और सफाई करके खाली हाथ वापस लौटे हैं, उनकी टीम का एक लड़का बोला। वो सब कुछ धूल मिट्टी भरी जगह में काफ़ी परेशान हो चुके थे। सिद्धांत ने उनकी फीस पे की। फीस लेने के बाद उनकी टीम जा चुकी थी, तो वहीं सिद्धांत भी जाने से पहले नंदिनी के पास गया। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद अस, सिद्धांत ने काफी फॉर्मली कहा। नंदिनी ने खोए हुए अंदाज में कहा, उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। ठीक है फिर, शायद फिर कभी हमारा मिलना ना हो, कहकर सिद्धांत वहां से जाने लगा। तभी नंदिनी ने उसे रोकने के लिए आवाज दी। रुको सिद्धांत, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जी कहिए। मैं शिव से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम हमारी मीटिंग अरेंज करवा सकते हो, नंदिनी ने पूछा। हाँ करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना सही होगा, शिवी का अब तक उनसे रिश्ता है इसीलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप आगे बढ़ चुकी हैं मिसेस वॉटसन, आपका उनसे मिलना सही नहीं रहेगा, आपके हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं आएगी, सिद्धांत ने अपना नजरिया बताया। मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ जो बरसों पहले कर लेनी चाहिए थी, अब तुम ये बताओ कि तुम मेरा काम कर सकते हो या नहीं, नंदिनी ने सख्त शब्दों में सीधे सीधे पूछा। सिद्धांत ने उनकी बात पर हामी भरी और कहा, ठीक है फिर हम कल ठीक 11 बजे मिलते हैं, नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया। सिद्धांत वहां से जा चुका था, तो वहीं उसके जाने के बाद नंदिनी भी तुरंत अपने घर चली गई। रात को डिनर के बाद आर्या बंधन के साथ उसके रूम में था, वो उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जबकि शिवी उस टाइम प्रतिभाजी के साथ थी। भाई सच बताइए ना, आप दोनों के बीच सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बंधन ने पूछा। और तुझे ये क्यों लगा, नंदिनी ने तुम्हें कुछ कहा, आर्या ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय खुद दूसरा सवाल कर लिया। वो कब कुछ कहाँ कहती है, बस चुप सी रहती हैं, मुझे उनकी आंखों में एक सूनापन नजर आता है, सगाई वाले दिन जब बात की थी तब उनकी आंखों में चमक थी जो अब कहीं खोसी गई हैं, बंधन ने शिवी के साथ रहते एक दिन में ही काफी कुछ महसूस कर लिया था। हाँ उसकी मॉम के साथ उसका झगड़ा हुआ है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। तो क्या हम उनका मूड ठीक करने के लिए कुछ करें, बंधन ने पूछा। मैं बस उनमें खुश देखना चाहती हूँ, उन्हें कभी ये फील मत करवाना कि उन्होंने आपको सिलेक्ट करके कोई गलती की हो। आर्या के चेहरे पर हल्की स्माइल थी जो कि उसने बंधन को दिखाने के लिए की थी। काश कि वो मुझे सिलेक्ट करती, अकेला तो उसे अब भी नहीं छोड़ूंगा, पर कभी न कभी तो अलग होना ही पड़ेगा, आर्या ने अपने मन में कहा। उसे चुप देखकर बंधन ने कहा, कहीं उनकी परेशानी की वजह आप तो नहीं हो भाई, उसके ऐसा कहने पर आर्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मैंने तुम्हें रीजन बता दिया है बेटू, तुम तो मेरी गलतियां निकालने पर आ गई, उनकी मॉम के साथ उनका झगड़ा हुआ होगा, लेकिन आप दोनों के बीच तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ ना, बंधन ने बात को संभालते हुए कहा। तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी हो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ तुम्हारे पास नंदिनी का मूड ठीक करने का कोई आइडिया है तो बताओ, क्यों ना हम घूमने चलें, पूरा यूके ही इतना ब्यूटीफुल है, हमारा यूके भी आप पहले यूके से किसी भी मायने में कम नहीं है, अब ये साबित करने का टाइम आ गया है, बंधन ने मुस्कुराकर कहा। उसने आर्या के गाल पर किस किया और बाहर चली गई। इसे कुछ ज्यादा ही फील होता है पागल लड़की, क्या नंदिनी सच में इतनी उदास है जो मैं फील नहीं कर पा रहा और इसे फील हो गया, आर्या ने बड़बड़ाकर कहा। वो भी उसके पीछे गया। बंधन आर्या के पास से शिवी और प्रतिभाजी के पास गई थी। प्रतिभाजी उन्हें आर्या और बंधन के बचपन की फोटो दिखा रही थी। अच्छा लेडीज सुनिए, बहुत हो गया घर पर बैठकर बोर होना, आई डोंट वॉन्ट लिसन एवरीथिंग, अभी आप दोनों अपने कमरे में जाएंगी और पैकिंग करेंगी, हम कल अर्ली मॉर्निंग घूमने जा रही हैं, बंधन ने वहां आकर तेज आवाज में अनाउंसमेंट की। फिर उसने शिवी की तरफ देखा और कहा, एंड आप भाभी आज की तरह नहीं चलने वाला, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए, हम अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे, तो आप टाइम से उठ जाना, शिवी ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। आर्या भी वहां आ गया था। काफी अच्छा प्लान है तुम्हारा, उससे भी अच्छा कि तुमने नंदिनी को पहले ही जल्दी उठने के लिए वॉर्न कर दिया, आर्या ने शिवी की तरफ देखकर कहा। तुम दोनों भाई बहन फिर से इसे परेशान करने लगे। प्रतिभा जी ने उन्हें प्यार से डांटा और शिवी के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम इन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, इन्हें दूसरों को परेशान होते देख कुछ ज्यादा ही मजा आता है। शिवी ने मुस्कुराकर हामी भरी। उसने बंधन और आर्या की तरफ देखा। आर्या बंधन के कंधे पर कोहनी टिकाकर खड़ा था। चलो तो फिर लगते हैं काम पर, गुड नाइट एवरीवन, आर्या वहां से जाने से पहले बोला। तुम भी सो जाओ बेटा, सुबह जल्दी उठना है, प्रतिभा जी ने शिवी से कहा। शिवी भी आर्या के पीछे पीछे ऊपर जाने लगी। उसका कमरा आर्या के बगल में ही था। उसे आते देखा आर्या उसके लिए रुक गया। उसने महसूस किया शिवी का चेहरा उतरा हुआ था, वो परेशान लग रही थी। आर्या ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मन कर रहा है जोर जोर से रो। मेरे दिल में एक अजीब सा डर है, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, शिवी ने परेशान होकर कहा। तुम्हें अभी से ऐसी फीलिंग आने लग गई? हियरिंग में अभी काफी टाइम बचा है, आर्या ने कहा। तुम्हें मुझे कंसोल करना चाहिए, तुम तो मुझे और डरा रहे हो। ये वो डर नहीं है आर्या, मैं इसका सामना पहले भी कर चुकी हूँ। पापा की हियरिंग पहली बार नहीं हो रही, पर फिर भी डर लग रहा है। शिवी अपनी परेशानी आर्या को शब्दों में बता नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो आर्या के गले लग गई। प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना, शिवी ने कहा। तुमने अपना रास्ता खुद सिलेक्ट किया है नंदिनी, मैं तुमसे झूठा वादा नहीं करूंगा। अगर तुम अपने पापा की सच्चाई प्रूव नहीं कर पाई तो उन्हें सजा हो जाएगी, उन्हें सजा मेरी वजह से होगी, हो सकता है इस बार उन्हें। बोलते हुए आर्या एक पल के लिए रुक गया, फिर वो धीमी आवाज में बोला, शायद उन्हें फांसी की सजा हो, तो क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ इस सच के साथ बिता पाओगी कि उनकी मौत का कारण मैं होने वाला हूँ?
शिवी उससे अलग हुई और ना में सिर हिलाया। उसके ना कहते ही आर्या ने कहा, तो बस मैं भी उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकता जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। चलो सो जाओ और ज्यादा मत सोचो, सब अच्छा ही होगा। आर्या ने प्यार से शिवी के बालों को सहलाया और अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद शिवी भी अपने कमरे में आ गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तुम समझ नहीं आ रहे हो आर्या, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूंगी। शिवी अपने बिस्तर से उठी और बैग में से अंगूठी निकाली। ये वही अंगूठी थी जो उसने आर्या को एंगेजमेंट के टाइम पहनाई थी। उसने उसे झूठ बोला था कि वो अंगूठी उसके पास नहीं है। सोचा था जब सब सही हो जाएगा तब पूरे हक से इसे वापस पहनाऊंगी। पहली बार महसूस हो रहा है कि कुछ भी सही नहीं होगा। शिवी ने अंगूठी को आर्या की तरह अपने गले की चेन में पहन लिया। वो म्यूजिक सुनने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। कुछ ही देर बाद शिवी को नींद आ चुकी थी। रात के 1 बज रहे थे। हरिद्वार के गंगा घाट के पास मौजूद धर्मशाला में रॉकी और गौरव मलिक पहुंच चुके थे। वो धर्मशाला आम लोगों के रुकने के लिए बनाई गई थी। जिम को वो जगह खास पसंद नहीं आई लेकिन महेश ने उन्हें इसी जगह पर बुलाया था। वहां पहुंचते ही जिम ने कहा, अब मैं और इंतजार नहीं करने वाला, इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं, उसे बोल देना कल शाम तक यहां आ जाए, उसने कल रात आने को कहा है। जैसे ही रॉकी ने बताया जिम उस पर फिर से चिल्लाने लगा। जब उसने रात को आने के लिए कहा था तो हम भी कल सुबह आ सकते थे, क्या जल्दी थी इतनी जल्दी आने की, जिम गुस्से में बोला। शांत हो जाइए सर जी, ये जगह अच्छी है, आप यहां घूमेंगे फिरेंगे तो आपका मूड सही हो जाएगा, यहां तो मुंबई जितनी गर्मी भी नहीं है। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूं, उसका गुस्सा शांत करने के लिए गौरव मलिक ने बातों का रुख मोड़ दिया। जिम गौरव मलिक के साथ वहां से चला गया जबकि रॉकी अभी भी वहां खड़ा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उनके पीछे से वो गुस्से में बड़बड़ाया, साला सबने मजाक बना रखा है, महेश को कहना पड़ेगा कि अब तो वो और भी देर से आए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। जब से आया है अपनी अंगुली पर नचा रखा है इसने हमें, मन तो करता है सबसे पहले इसे गोली से उड़ाऊं। रॉकी गुस्से में दंदनाता हुआ वहां से निकल गया। वो महेश से मिलने जा रहा था। जिम इस बात से बेखबर था कि महेश और रॉकी ने पहले से ही अलग से मिलने की प्लानिंग की है और इसमें गौरव मलिक भी शामिल था।